नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्र मंत्री, यूपी के मंत्री सहित कई राजनेता मौजूद थे। अपने भाषण की शुरुआत स्थानीय भाषा में करते हुए पीएम ने काकोरी के तीन सपूतों को हाथ जोड़कर नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी में जो नए एयरपोर्ट, रेलवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान लेकर आ रहे हैं। यूपी को जिस काम की जरूरत है, वो डबल इंजन की सरकार दे रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा, पहले जनता के पैसे का दुरुपयोग होता था, पहले कागजों पर योजनाएं अपनी तिजोरी भरने के लिए बनाई जाती थीं, लेकिन आज यूपी का पैसा यूपी के विकास में लगाया जा रहा है। वहीं पीएम ने कहा कि यूपी प्लस योगी आज बहुत है उपयोगी। व्यापारी कारोबारी घर से सुबह निकलता था तो परिवार को चिंता होती थी, गरीब परिवार दूसरे राज्य में काम करने जाते थे तो घर और जमीन पर अवैध कब्जे की चिंता होती थी, कब कहां दंगा हो जाए, कहां आगजनी हो जाए, कोई नहीं कह सकता था। पहले कई गांवों से पलायन की खबरें आती रहती थी। बीते 4.5 साल में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया है। आज माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारतों पर चलता है, लेकिन दर्द उसे पालने पोसने वालों को होता है। इसीलिए आज यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक को लेकर पूर्व सीईसीज ने भी गलत बताया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर कम से कम 5 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठक और आदेश से चुनाव आयोग की छवि धूमिल हो सकती है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 अन्य सहयोगियों को पीएमओ की तरफ से बैठक के लिए बुलाया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने ये भी बताया था कि सीईसी सुशील चंद्र इस तरह बुलाए जाने से खुश नहीं थे। इसके बाद 16 नवंबर को एक ऑनलाइन मीटिंग हुई। इसके बाद सुशील चंद्रा और 2 अन्य सहयोगी भी पीके मिश्रा के साथ अनौपचारिक बातचीत में शामिल हुए। चुनाव आयोग को कानून मंत्रालय की तरफ से पत्र भेजा गया था और कहा गया था कि चुनावी सुधारों को लेकर कुछ आवश्यक चर्चा करनी है। इसके लिए बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त को भी शामिल होना है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पत्र की भाषा पर भी एतराज जताया था और कहा था कि ये किसी समन की तरह लगती है। सरकार की तरफ से इस तरह के पत्र और सीईसी के साथ बैठक को गलत बताते हुए पूर्व सीईसी एसवाई कुरेशी ने कहा कि ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। क्या अगर न्यायिक सुधार को लेकर कोई चर्चा करनी होगी तो प्रधानमंत्री सीधे सीजेआई को ही बैठक में बुला लेंगे। प्रधानमंत्री भी इस तरह से सीईसी को किसी बैठक में नहीं बुला सकते, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। रिजर्व बैंक ने अपने केंद्रीय बोर्ड से कहा है कि क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। शुक्रवार को आरबीआई की हुई बैठक में ये बात कही गई। खबर है कि आरबीआई के आंतरिक सदस्य प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में नहीं हैं। गवर्नर शक्तिकांत दास ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लखनऊ में हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। प्रेस रिलीज में सेंट्रल बैंक ने कहा, डिजिटल करेंसी और निजी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कई मामलों पर इस बैठक में चर्चा की गई। उधर खबर है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर इस सत्र में बिल लाने के मामले को टाल सकती है। संसद का सत्र अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा और फिर अगला सत्र बजट का शुरू हो जाएगा। इसके बाद 5 राज्यों की चुनावी गहमागहमी शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार चुनाव के बाद इस बिल को संसद में ला सकती है। केंद्रीय बैंक ने बार बार क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ अपनी मजबूत विचारों को रखा है। उसका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी देश की माइक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता के खिलाफ बड़ा खतरा है। उसने क्रिप्टो करेंसी पर ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों की संख्या और उनकी क्लेम की गई मार्केट वैल्यू पर भी संदेह किया है। बता दें कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहस जारी है। सरकार संसद के मौजूदा सत्र में इससे संबंधित रेगुलेशन के लिए बिल लाने वाली थी, लेकिन अभी वह तय नहीं हुआ है। आरबीआई के ज्यादातर सदस्यों के निजी क्रिप्टो करेंसी वित्तीय स्थिरता पर उसके असर के बारे में शुक्रवार की बोर्ड बैठक में अपनी चिंताएं जाहिर की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। चोटिल रोहित शर्मा के टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद अनुभवी सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को टेस्ट टीम का नया उपकप्तान बनाया गया है। बीसीसीआई के सूत्र ने एएनआई से कंफर्म किया कि राहुल साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए टेस्ट टीम के उपकप्तान होंगे। केएल राहुल मौजूदा समय में ही शानदार फॉर्म में है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में राहुल ने अपनी उपयोगिता साबित की है। انگلینڈ دورے سے ان کو ٹیسٹ ٹیم میں واپسی کا موقع ملا تھا۔ انہوں نے 8 پاریوں میں 39.38 کی اوسط کے ساتھ کل 315 رن بنائے تھے۔ راہل نے سال 2014 میں آسٹریلیا دورے پر اپنے ٹیسٹ کریئر کا آغاز کیا تھا۔ اب تک کھیلے 40 ٹیسٹ میچوں میں ان کے بلے سے 35.17 کی اوسط کے ساتھ 2321 رن دیکھنے کو ملے ہیں۔ 68 پاریوں میں راہل نے 6 شتک اور 12 اردھ شتک لگائے ہیں۔ بالی ووڈ ایکٹریس کنگنا رنوت نے لیرسسٹ جاوید اختر مانہانی معاملے میں اب ممبئی کی بوریولی سیشن کورٹ کا رخ کیا ہے۔ کنگنا نے سیشن کورٹ میں مانہانی کیس کو ٹرانسفر کرنے والی یاچکا کے فیصلے کو چنوتی دی۔ کنگنا کے خلاف جاوید اختر نے مانہانی کا کیس درج کروایا ہے۔ چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ نے اکتوبر میں اندھیری مجسٹریٹ کی عدالت سے معاملے کو ٹرانسفر کرنے کی کنگنا کی یاچکا کو خارج کر دیا۔ کنگنا کے وکیل رجوان صدیقی کے ذریعے بوریولی سیشن کورٹ میں دائر کیے گئے آویدن میں کہا گیا، سی ایم ایم یہ سمجھنے میں وفل رہے ہیں کہ مجسٹریٹ نے آویدک کو جان بوجھ کر شتی پہنچانے کے لیے اپنی پاور کا غلط استعمال کیا ہے۔ جاوید کی شکایت کے بعد میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کورٹ نے کنگنا کے خلاف ضمانتی وارنٹ جاری کیا۔ کنگنا نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، ضمانت اور مشلکے کے بعد ان کا وارنٹ رد کر دیا گیا تھا۔ وستار سے خبریں پڑھنے کے لیے آئیے جنستا.com پر۔ نمسکار۔